countrywide.
नमस्कार श्रोताओं, कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है ऑटिज्म के आरंभिक लक्षण, पहचान और देखभाल। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेस के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र धमीजा। डॉक्टर धमीजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर धमीजा, आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, जागरूकता फैलाने का दिन है, तो आपके माध्यम से हम जो हमारे लिसनर्स हैं उनको जागरूक करना चाहेंगे, तो सबसे पहले आप हमें संक्षेप में बताएं कि ऑटिज्म क्या होता है।
देखिए, ऑटिज्म जिसको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें जो बच्चे हैं या कुछ बड़े भी हैं वो उसकी सेंसरी इंटीग्रेशन है या जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं वो या वो इंटरेक्ट करते हैं उसमें प्रॉब्लम है। वो नॉर्मल, लेकिन उनके देखने का, समझने का, सुनने का तरीका अलग है। तो ये एक चीज है जो कि काफी लोगों में पाई जाती है और अंडर डायग्नोज भी है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है
जी।
हर बच्चे का, हर उसका व्यक्ति का एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, सेंसरी इंटीग्रेशन और सेंसरी जो रिएक्शन है वो अलग हो सकता है। तो द वे बच्चे जो कम्युनिकेट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है और उससे जो इंटरेक्ट करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। आज के दिन का महत्व ये है कि आज हम ऑटिज्म जो अवेयरनेस डे है या वीक भी कहते हैं इसको, उसमें ना केवल हम अवेयरनेस या जागरूकता फैलाएं बल्कि हम ये भी कोशिश करें कि ये भी एक एक्सेप्टेंस की तरफ जाएं। समाज में उनकी भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए और डाइवर्सिटी है तो ऑब्वियसली जो बच्चे थोड़े अलग हैं लेकिन वो भी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। कुछ बच्चों में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकती है और कुछ में बहुत टैलेंटेड भी होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, तो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, इसलिए इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं
जी। सो एक पूरा स्पेक्ट्रम है, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ लक्षण है। आप हमें बता सकते हैं कि जो लक्षण है या जो सिम्टम्स है वो आमतौर पर कौन कौन से होते हैं ऑटिज्म के? जैसा आप कह रहे हैं कि बच्चों में ये ऑटिज्म अक्सर दिखाई देने लगता है, तो जो उनके अभिभावक हैं या माता पिता हैं, किन बातों से उनको ये आभास हो सकता है कि हमारे बच्चे को ये स्थिति है ऑटिज्म की?
देखिए, ये जो लक्षण है ये अलग अलग हो सकते हैं, इट्स नॉट ए डिजीज एक्चुअली। एक बहुत बड़ा जो है स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया है, इसको थोड़ा डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग और लर्निंग और एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड बोल सकते हैं कि उनका एक अलग तरीका है। वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं लेकिन डिफरेंटली बिहेव करते हैं। दैट डज नॉट मेक कि वो लेस कैपेबल है या लेस वैल्यूएबल है। इनफैक्ट सम ऑफ द इंडिविजुअल्स आर वेरी वेरी यूनिक स्ट्रेंथ, मैंने आपको बताया है। तो यूजली क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी है तो थोड़ा सा उनको चैलेंजेस भी हो सकते हैं उनको एडजस्ट करने में, पेरेंट्स के, अभिभावक को, टीचर्स को, अगर वो उसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो फिर वो रिएक्ट करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इसका अवेयरनेस होना चाहिए
जी।
और जागरूकता फैलानी चाहिए, लक्षण को पहचाना चाहिए, चाहे वो बच्चा वो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव है या कम्युनिकेशन में स्लो है या लर्निंग में स्लो है, तो ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, इट्स जस्ट नॉट ए वर्ड, इट्स एन एक्शन। एक स्मॉल वर्ड काइंडनेस का है, पेशेंस का है, सपोर्ट करना है, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझें, इसको एक्सेप्ट करें। फिर ये जो डाइवर्सिटी में आता है, कंडीशंस अलग अलग लोग हैं, अलग टाइप से समझते हैं, अलग टाइप से बिहेव करते हैं, लेकिन वो भी एक हमारे समाज का अंग है और हम उनको अपने साथ जोड़ें और उनको नॉर्मल तरीके से बिहेव करें तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा।
तो किस तरह का सपोर्ट और कहां कहां से ऐसे बच्चों को सपोर्ट देना जरूरी होता है ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें?
एक तो ये है कि इनके साथ आपको रिएक्ट नहीं करना होता है, आपको रिस्पॉन्ड करना होता है और आपको समझना होता है कि ये जो जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं और ये जो प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, सेंसरी इनपुट्स की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कोई ऐसी नहीं है कि बीमारी जिसको हम ठीक कर सकें। ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको जो एक्सेप्ट करने वाली बात है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम इसको समाज में जागरूकता फैलाएं और जितने ज्यादा लोगों के बीच में हम ये पहचान बना सकें जो कंडीशन है, ये भी एक तरह के बच्चे हैं जो डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं।
सो जो आप बात कर रहे हैं कि उनके रिस्पॉन्सेज अलग अलग तरह के होते हैं या उनके कम्युनिकेशन में साइंस मिल जाते हैं, क्या छोटी छोटी कुछ ऐसी आप बातें बता सकते हैं? क्या सोशल सिचुएशंस में अनकंफर्टेबल होते हैं या कुछ ऐसे उनके फिजिकल जेस्टर्स होते हैं जो हमें इंडिकेशन देते हैं कि हाँ, इन बच्चों को स्पेशल काइंडनेस, उस तरह से एक व्यवहार की जरूरत है?
सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में जो है डिफिकल्टी इन मेकिंग आई कॉन्टेक्ट, ये चीजें हो सकती हैं और हो सकता है कि दे आर हैविंग ट्रबल्स अंडरस्टैंडिंग फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज को, या वो कंसिस्टेंटली अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या उनको सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स नहीं बना पा रहे हैं या फ्रेंडशिप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं और वो अकेला पसंद करते हैं खेलना या लिमिटेड इंटरेस्ट लेते हैं सोशल इंटरेक्शन में और दूसरों की फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करने में ट्रबल हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं और ये स्पीच एंड लैंग्वेजेस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे डिलेड स्पीच हो सकती है डेवलपमेंट में या स्पीच नहीं आए या रिपीटिंग वर्ड्स हैं इकोरेलिया जिसको बोलते हैं अनयूजुअल टोन्स हैं पिच है ये सब चीजें हो सकती हैं और डिफिकल्टी मेंटेनिंग और स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अच्छा।
और दूसरी चीज और भी देखी गई इनमें कि रेपिटेटिव बिहेवियर्स जो है रेपिटेटिव हैंड फ्लैपिंग है रॉकिंग है पिनिंग है ये सब चीजें हो सकती हैं और इनकी जो प्रेफरेंसेज होती हैं ये भी अलग टाइप की होती हैं। ये जो बहुत छोटी छोटी चीजों पे अपसेट हो जाते हैं और सेम एक्टिविटीज को इंटरेस्ट को बार बार रिपीट करते हैं और फोकस नहीं कर पाते हैं तो ये सब जरूरी चीजें हैं। सेंसरी सिस्टम जो है ओवर रिएक्ट करते हैं ये चाहे वो साउंड्स हैं या अंडर रिएक्ट भी कर सकते हैं ओवर रिएक्ट भी कर सकते हैं तो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग से जो इनका रिएक्शन है साउंड्स का लाइट का टेक्सचर्स का स्मेल का कभी कभी वो अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करते हैं चाहे वो फूड हो चाहे वो टेक्सटाइल हो एंड ये सब चीजें जो पॉसिबल साइंस हैं। पर डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन जैसे बच्चे ने देर से बोलना शुरू किया देर से चलना शुरू किया जैसे हम कहते हैं कि वॉकिंग एट वन एंड टॉकिंग एट टू तो ये डिलेड हो सकते हैं और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफिकल्टी अडेप्टिंग टू नॉर्मल सिचुएशन। तो ये जब सिम्टम्स आते हैं तो यूजली ये 2-3 साल में आ जाते हैं माइल्डर जो है बट हो सकता है कि क्योंकि माइल्ड हो तो नहीं पता लगेगा और डिले हो सकता है।
तो कारण क्या है किसी में भी ऑटिज्म होने का? क्या ये जन्मजात होता है या एनवायरमेंट में कुछ त्रुटियां हो ये हमें बता सकते हैं आप?
ये तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जैसे मैंने कहा कोई सिंगल फैक्टर नहीं है कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एनवायरमेंटल दोनों का ही है जो हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं कई बार मोस्टली फैमिलीज में भी हो सकता है कोई सर्टन जीन वेरिएशन हो सकती हैं कोई फ्रेजाइल एक्स ऐसे सिंड्रोम्स भी हैं तो ऐसा कोई वन ऑटिज्म जीन नहीं है बहुत सारे जीन इन्वॉल्व हो सकते हैं और खासकर डेवलपमेंट की जब बात करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट में तो उसमें डिफरेंसेज हैं इनमें और दूसरे बच्चों में कि कैसे ब्रेन डेवलप करता है या ग्रो करता है और ब्रेन के स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन उसमें चेंजेस आ सकते हैं और ये जो अफेक्ट करते हैं उनके सोशल बिहेवियर पे कम्युनिकेशन पे और लर्निंग पे। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रीनेटल हैं बिफोर बर्थ भी हैं कुछ प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन हो जाना है या एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंस यूज है या पुअर मेटरनल न्यूट्रिशन भी हो सकती है तो ये सब चीजें हैं जो प्रीनेटल या प्रेगनेंसी से पहले हो सकते हैं। लेकिन क्या पेरेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं? तो कुछ ऐसे पेरेंटल फैक्टर्स हैं जैसे एज पेरेंट्स की जो है अगर एडवांस एज है पेरेंट्स की स्पेशली फादर की तो उसमें चांसेस हो सकते हैं और कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती है मदर में जिसमें चांसेस हैं कि बच्चे को ऑटिज्म हो। लेकिन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है चाहे टॉक्सिन हो चाहे पोल्यूशन हो वो वेरी वेरी प्रीमेच्योर बर्थ या लो बर्थ वेट भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन कुछ भ्रांतियां भी हैं जैसे कुछ वैक्सीन हैं वैक्सीन कभी भी ऑटिज्म नहीं करती हैं पेरेंटिंग के स्टाइल कभी भी जो है ये ऑटिज्म का कारण नहीं है। तो बेसिकली अगर आप बड़ी पिक्चर देखें ब्रेन डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है चाहे वो जीन की वजह से है चाहे वो एनवायरमेंट की वजह से है चाहे दोनों की वजह से है तो कोई एक सिंगल चीज की वजह से नहीं है मल्टीपल फैक्टर्स हैं।
तो आप अभी जैसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इनकी इंटेलिजेंस लेवल्स भी कई बार काफी हाई होती हैं या एवरेज होती हैं जैसे आप मिथ की बात कर रहे थे एक ये भी है कि बच्चे जिनको ऑटिज्म है वो सीख नहीं सकते सो ये आप हमें बता सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो सीख पाए उसके लिए उनकी शिक्षा के लिए किस तरह का सपोर्ट सिस्टम जरूरी होता है?
हमको ये देखना है कि जो बच्चे हैं तो या तो ये बिलो एवरेज इंटेलिजेंस हो सकती है जिनको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी बोलते हैं या ये एवरेज इंटेलिजेंस हो सकती है और काफी लोगों में तो अबव एवरेज और हाई इंटेलिजेंस भी हो सकती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है कुछ बच्चों में लो इंटेलिजेंस हो सकती है कुछ में बहुत हाई भी हो सकती है। तो अबाउट 30-40% में हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है और उनको डेली सपोर्ट जो है ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू अदर्स और उनकी डिफिकल्टी मेनली लर्निंग कम्युनिकेशन और इंडिपेंडेंस में हो सकती है। लेकिन जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनकी एवरेज टू हाई आईक्यू होती है और उसमें कई सारे सिंड्रोम्स भी हैं जो पहले हम एस्पर्जर सिंड्रोम बोलते थे उनकी स्ट्रांग एबिलिटी है स्पेसिफिक एरिया में। कुछ लोग मैथ में बहुत बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट और अच्छी परफॉर्मेंस वाले हैं मेमोरी कुछ लोगों की बहुत अच्छी होती है कुछ टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हो सकते हैं और कुछ लोगों में तो अनइवन स्किल प्रोफाइल भी होती है बहुत सारे सम एरियाज में बहुत अच्छे हैं और सम एरियाज में बहुत वीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा मेमोरी में बहुत अच्छा है पैटर्न में बहुत अच्छा है लॉजिक में बहुत अच्छा है लेकिन अदर चीजों में वीक है जैसे सोशल अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज है इनमें बहुत सारी जो है कमियां भी हो सकती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीजें ध्यान में रखें और सपोर्ट सिस्टम के लिए आपने इस क्वेश्चन पूछा है तो हमें एक ऐसा एनवायरमेंट ऐसे इकोसिस्टम तैयार करना चाहिए जैसे स्कूल्स में है टीचर्स को भी पेरेंट्स को भी कि ऑटिज्म है क्या और कैसे हम इसको पहचाने और कैसे हम इन बच्चों को सपोर्ट करें चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो वर्क प्लेस में हो और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है हमें समाज को जागरूक करना समाज को ये लाना कि इनको एक्सेप्ट करें इनको इंक्लूसिवनेस लेके आए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग सिस्टम लेके आएंगे
जी
तो ये ऑटिज्म के बच्चों के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है।
जी
लेकिन क्योंकि कहते हैं हम सपोर्ट इज नॉट वन साइज फिट, एक साइज सबके लिए ठीक नहीं है, नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एज कितनी है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उसके क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है वो। बट यूजली हम मिक्स ऑफ थेरेपीज देते हैं, फैमिली सपोर्ट है, एजुकेशन है, कम्युनिटी रिसोर्सेज है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स है, ये सब हम करते हैं। खासकर अगर हम फैमिली और केयर गिवर सपोर्ट की भी बात करें तो उनके लिए जरूरी है कि दे शुड लर्न अबाउट ऑटिज्म, कि कैसे बच्चा कम्युनिकेट करता है, कैसे स्ट्रक्चरल रूटीन उसकी क्रिएट करनी है, कैसे आपने सिंपल और क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है, कैसे वी हैव टू बी काइंड पेशेंट एंड कंसिस्टेंट। और ऑफकोर्स बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो गाइडेंस और इमोशनल सपोर्ट के लिए होते हैं। जबकि दूसरी चीजें जो है मेडिकल हिसाब से स्पीच थेरेपी बड़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, बिहेवियरल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बिहेवियरल एनालिसिस भी बोलते हैं, जो कि हेल्प करती है इनके सोशल इंटरेक्शन में, लर्निंग में और डेली लिविंग स्किल्स में। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो इनकी डेली टास्क में, ड्रेसिंग में, ईटिंग में, राइटिंग में हेल्प करती है, और इनकी जो सेंसिटिविटीज हैं उनके ऊपर हम कार्य करते हैं। टीचर्स का इंटरेक्शन जो सोशल स्किल ट्रेनिंग है, कैसे बच्चे और टीचर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं और कैसे उनकी रिलेशनशिप स्किल्स बनती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसा इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान भी बना सकते हैं। तो एजुकेशनल सपोर्ट है, कम्युनिकेशन टूल्स हैं, कम्युनिटी एंड सोशल सपोर्ट है जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट ग्रुप्स हैं, और इसके अलावा टीनेजर्स और अडल्ट्स में भी हैं, उनके लिए जॉब ट्रेनिंग, वोकेशनल प्रोग्राम, वर्क प्लेस अकोमोडेशन, इंडिपेंडेंट लिविंग सपोर्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। और लास्टली जो इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट है, जैसे इनको एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, सेंसरी ओवरलोड है, उसको कैसे मैनेज करना है, काउंसलिंग और थेरेपी कैसे हम दे सकते हैं जब जरूरत है, और उनमें सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट सपोर्ट सिस्टम जो मैं बोलता हूँ वो स्ट्रेंथ देखिए बच्चे की, उनको इंडिपेंडेंट बनाइए एंड प्रोवाइड देम अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट बीइंग कि उसको फिक्स करो चैलेंज को, ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जिसमें अलग अलग, जिसको ऑटिज्म है उनके अलग अलग लक्षण होंगे, उनकी अलग अलग जरूरतें होंगी। सो ये जो डायग्नोसिस है उसके लिए जब पेरेंट्स को लगे कि हमारे बच्चे को कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है तो वो इमिजिएटली कहाँ जाए डायग्नोसिस के लिए, और किस तरह से उनका उपचार किया जाए उसके लिए वो कहाँ जा सकते हैं?
इसके लिए बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, पीडियाट्रिक या डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिस्ट हैं या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस हैं, वो इस चीज के लिए ट्रेंड हैं कि कैसे इसको डायग्नोस किया जाए और कैसे इसको मैनेज किया जाए और फिर फैमिली सपोर्ट कैसे की जाए। तो ये जो है बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और हम इस पे काफी काम करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस भी काम करते हैं, पीडियाट्रिशियंस भी काम करते हैं, और एक डायग्नोसिस जो है इंटरेक्शन के बाद, बच्चे को एग्जामिनेशन के बाद, बच्चे की सोशल स्किल्स देखने के बाद, हम सब ये करते हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि काफी टाइम से जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जो हमारे बीच में जागरूकता चल रही है, तो ये खासकर आज के दिन जो हम जो कहते हैं कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमें एक्सेप्टेंस क्रिएट करनी है, हमें इंक्लूसिवनेस क्रिएट करनी है, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी डन वेरी इजीली।
सो जैसा आपने कहा कि एक्सेप्टेंस और काइंडनेस के साथ उनको ट्रीट करना, उनके साथ पेश आना, और जो थेरेपी है, उचित थेरेपी, सबका जो एक मिला जुला समागम है, उसी से ये जो समस्या है इसको पार किया जा सकता है।
बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज आपको बीच में बताना चाहूंगा
जी,
कि आपने ये पूछा कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करें या कैसे इसको डायग्नोस करें
जी,
तो इसके लिए बहुत सारी डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल्स हैं हमारे पास, खासकर बच्चे जब 18 से 24 महीने के बीच में आते हैं
जी,
तो कैसे स्पीच डेवलपमेंट है बच्चे की, कैसे सोशल इंटरेक्शन कर रहा है, क्या उसका बिहेवियरल पैटर्न है, बहुत सारे स्क्रीनिंग टूल्स हैं जैसे एम चार्ट आर भी है, और कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो मिलकर टीम करती है, पीडियाट्रिशियन है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, मेरे जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, सोशल इंटरेक्शन कैसे हैं, कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग स्किल्स कैसे हैं, और बहुत सारी स्केल्स और टूल्स हैं जो डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं, जो मैंने आपको बताया है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर धमीजा शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम में और ऑटिज्म से जुड़ी इतनी बहुमूल्य जानकारी हमें देने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइज